एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प देश की कहानी में उतरेंगे एक किताब के जरिए।
जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केनेथ मॉर्गन की किताब ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही शायद दिमाग में कंगारू आते हैं ना, या खूबसूरत बीचेस।
हाँ, और शायद क्रिकेट टीम भी।
बिल्कुल, लेकिन ये किताब, जैसा आपने कहा, इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में समझने की कोशिश है कि कैसे उस बड़े से महाद्वीप का जो अनोखा भूगोल है, उसका इतिहास जिसमें काफी उतार चढ़ाव रहे, और वहां की संस्कृतियां,
हाँ,
इन सब ने मिलकर कैसे दुनिया के सबसे अलग समाजों में से एक को बनाया है। और हम ये चर्चा दो अलग अलग समरीज के आधार पर कर रहे हैं, तो उम्मीद है एक ज्यादा पूरी तस्वीर सामने आएगी। और देखिए, ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो आज हर जगह मायने रखती हैं, जैसे अनुकूलन, एडेप्टेशन,
सही।
कैसे बदलते हालातों से तालमेल बिठाना है। फिर बहुसंस्कृतिवाद की बात है, उपनिवेशवाद की जो एक विरासत है, कड़वी ही सही,
हाँ, वो भी है।
और एक देश जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, उसकी जद्दोजहद। ये सारे मुद्दे तो आज पूरी दुनिया में और हमारे अपने देश भारत में भी कितने रेलेवेंट हैं।
बिल्कुल सही कहा। तो आज हम यही कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कहानी की परतें खोलने की, समझेंगे कि कैसे वो अपनी जमीन की चुनौतियों से जूझा और कैसे एक सजा कॉलोनी से बढ़कर आज एक मॉडर्न मल्टीकल्चरल लोकतंत्र बना।
तो चलिए शुरुआत लेखक से करते हैं, केनेथ मॉर्गन। इनके बारे में भी एक दिलचस्प बात है।
हाँ, क्या?
हमारे पास जो जानकारी है वो थोड़ी अलग अलग है। एक सोर्स कहता है कि वो एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने भूगोल, इतिहास, कल्चर सबको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त फील्ड रिसर्च की है।
अच्छा,
दूसरी तरफ एक और सोर्स उन्हें एक जाने माने वेल्श इतिहासकार बैरन मॉर्गन बताता है, जो ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं।
ओह, तो एक तरह से बाहरी नजरिया हुआ।
हाँ, शायद। और ये बाहरी नजरिया उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े फ्रेमवर्क में ऑस्ट्रेलिया के विकास को देखने में मदद करता होगा।
ये तो वाकई दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की जमीनी हकीकत की गहरी समझ, भूगोल, वहां के मूल निवासी।
और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य और वर्ल्ड हिस्ट्री का बड़ा पर्सपेक्टिव, शायद यही बात उनके काम को खास बनाती है।
बिल्कुल। और वो सिर्फ इतिहासकार नहीं है, वो भूविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मतलब कई अलग अलग फील्ड्स की जानकारी को एक साथ लाते हैं।
सही। और सबसे अच्छी बात, वो सिर्फ यूरोपियन कहानी नहीं सुनाते, वो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, स्वदेशी लोग, उनके नजरिए को भी पूरी अहमियत देते हैं।
ये बहुत जरूरी है।
तो अगर किताब को बहुत संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे, ये किस बारे में है?
देखिए, मेरे हिसाब से ये जगह और पहचान की कहानी है।
जगह और पहचान, ठीक है।
हाँ, मतलब कैसे खास तरह का माहौल, एक पर्यावरण वहां रहने वाले लोगों को शक्ल देता है।
और फिर वो लोग उस जगह को बदलते हैं।
बिल्कुल, ये एक दो तरफा रिश्ता है। किताब हमें ऑस्ट्रेलिया के पूरे सफर पर ले जाती है। लाखों साल पहले वो कैसे बना, फिर करीब 60,000 साल पहले पहले इंसान वहां कैसे पहुंचे।
बाप रे, 60,000 साल!
हाँ, और फिर 1788 में यूरोपीय लोगों का आना, कॉलोनी बसाना, और वहां से लेकर आज के मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया तक।
तो किताब का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, सेंट्रल आइडिया?
सेंट्रल आइडिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया की कहानी को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस विशाल, मुश्किल माहौल और उसे आबाद करने की कोशिश करने वाले इंसानों के बीच के तनाव को न समझें।
माहौल और इंसान के बीच का तनाव।
हाँ, ये एक पिनल कॉलोनी यानी सजा काटने की जगह से एक प्रॉस्परस मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी बनने की कहानी है।
और मॉर्गन सिर्फ उन क्लिशेज, मतलब उन घिसी पिटी बातों से आगे जाते हैं, जैसे आउटबैक या खतरनाक जानवर।
हाँ, वो असलियत दिखाते हैं, कैसे मूल निवासियों ने कमाल का अडेप्टेशन किया, कैसे यूरोपियन कब्जे के दौरान लड़ाइयाँ हुईं, फिर सोने की खोज ने कैसे सब बदल दिया।
इमिग्रेशन का असर।
बिल्कुल, और कैसे आज भी वो देश अपनी पहचान को लेकर एक तरह की बहस में उलझा हुआ है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की एकदम बुनियाद से, उसकी पुरानी धरती और दंड कॉलोनी के तौर पर शुरुआत।
हाँ, मॉर्गन बताते हैं कि भूवैज्ञानिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया बहुत पुराना है, स्थिर है और बाकी दुनिया से कटा हुआ। मिट्टी ज्यादा अच्छी नहीं, पानी की कमी।
डीप टाइम की बात भी करते हैं वो।
हाँ, डीप टाइम मतलब लाखों करोड़ों साल का वो पैमाना जिस पर यह महाद्वीप बना, और इसने वहां के जीवन पर गहरा असर डाला है।
और फिर 1788 में आए अंग्रेज, उन्होंने इसे दंड कॉलोनी बनाया, मतलब अपने देश के अपराधियों को भेजने की जगह।
हाँ, पर सिर्फ यही मकसद नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट भी था, दबदबा बढ़ाने का तरीका।
शुरुआती साल तो बहुत मुश्किल रहे होंगे।
बेहद मुश्किल। उस अनजान कठोर माहौल में टिके रहना ही बड़ी बात थी। कैप्टन आर्थर फिलिप जैसे लीडर्स ने बड़ी प्रैक्टिकलिटी दिखाई। बाद में गवर्नर लैचलान मैक्वेरी आए।
हाँ, उन्होंने इसे थोड़ा नागरिक समाज बनाने की कोशिश की, सिडनी को बसाया।
सही, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम और दुखद पहलू भी है।
वो क्या?
यूरोपीय लोगों के आने का मतलब था वहाँ पहले से रह रहे स्वदेशी लोगों के साथ टकराव, हिंसा।
उनकी जमीनें छीन ली गई।
बिल्कुल, उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। तो ये वो बुनियाद थी, पर्यावरण की चुनौती और एक जेल कॉलोनी की शुरुआत, जिसने शुरुआती ऑस्ट्रेलिया को गढ़ा।
अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट पीपल यानी स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर। ये लोग 60,000 साल से ज्यादा से वहां रह रहे थे।
हाँ, और मॉर्गन इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि वो किसी भी तरह से पिछड़े थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
बल्कि उन्होंने तो उस मुश्किल माहौल में जीने के कमाल के तरीके खोज लिए थे।
अद्भुत और टिकाऊ तरीके, सस्टेनेबल लिविंग के मास्टर थे वो। जमीन की देखभाल, प्रकृति से गहरा जुड़ाव, ये सब उनकी संस्कृति का हिस्सा था।
लेकिन फिर यूरोपीय विस्तार शुरू हुआ, भेड़ पालन, ऊन का बिजनेस।
हाँ, स्क्वाटर्स आए जिन्होंने बिना इजाजत बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया
और भेड़ पालने लगे।
इससे ऊन इंडस्ट्री तो बनी, इकोनॉमी को सहारा मिला, लेकिन ये जमीनें अक्सर स्वदेशी लोगों से छीनी गई थी।
इससे टकराव और बढ़ा होगा
बहुत ज्यादा, जिन्हें फ्रंटियर वॉर्स कहा जाता है। इसी दौर में ब्रिटेन से अपराधी भेजना भी बंद हुआ, ये दिखाता था कि कॉलोनीज अब सेटल हो रही थी।
तो एक तरफ हजारों साल की स्वदेशी कामयाबी और दूसरी तरफ यूरोपीय विस्तार की तबाही, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत मार्मिक है।
बिल्कुल, कहानी में अगला बड़ा मोड़ आता है 1850 के दशक में,
गोल्ड रश, सोने की खोज।
हाँ, इसने तो सब कुछ बदल दिया। दुनिया भर से लोग सोना खोजने ऑस्ट्रेलिया भागे, बहुत सारे चीनी लोग भी आए।
शहर रातों रात बड़े हो गए होंगे, मेलबर्न खासकर।
हाँ, इकोनॉमी में जैसे धमाका हो गया, लेकिन इसके साथ सामाजिक तनाव भी बढ़े।
यूरेका स्टॉकेड का जिक्र आता है यहाँ 1854 में।
हाँ, वो सोने की खदानों के मजदूरों का विद्रोह था सरकार के खिलाफ। उसे दबा तो दिया गया, पर वो ऑस्ट्रेलियन फोकलोर का हिस्सा बन गया,
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक।
सही कहा। और मॉर्गन बताते हैं कि इसके बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तेज हुए, जैसे सीक्रेट बैलेट, पुरुषों को वोट का अधिकार मिलना,
और फिर धीरे धीरे अलग अलग कॉलोनियों को एक करने की बात चली।
हाँ, 1890 की आर्थिक मंदी और बढ़ते राष्ट्रवाद ने इसमें मदद की। हेनरी पार्क्स, एल्फ्रेड डीकिन जैसे नेताओं ने कोशिश की,
और आखिरकार 1901 में कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बना।
तो देखिए कैसे जमीन से निकला सोना, उसने समाज बदला, लोकतंत्र की मांग उठी और फिर एक नेशन बना।
लेकिन इस नए नेशन में एक बड़ा विरोधाभास था।
वो क्या?
एक तरफ तो ये खुद को बड़ा प्रगतिशील सोशल लैब जैसा दिखा रहा था, वर्कर्स के राइट्स, सोशल इक्वालिटी की बातें, और दूसरी तरफ इसने अपनाई व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी।
मतलब
सिर्फ गोरे लोग, यूरोपीय मूल के लोग ही ऑस्ट्रेलिया आ सकते थे, बस सकते थे। 1901 का इमिग्रेशन एक्ट इसी नस्लीय सोच पर था, एशिया से लोगों को रोकना था।
अरे, ये तो बड़ा अजीब है, बराबरी की बातें और साथ में ऐसा भेदभाव।
हाँ, ये सोचने वाली बात है, शायद अपनी पहचान को लेकर असुरक्षा थी, बाहरी असर का डर था।
इसके बाद वर्ल्ड वॉर्स का दौर आया, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी को मजबूत किया, पर कमजोरियां भी सामने ला दी।
पहले विश्व युद्ध में गैलीपोली की लड़ाई, बहुत नुकसान हुआ।
हाँ, तुर्की में एंजैक सैनिकों की हार हुई, लेकिन इसी हार से एंजैक लेजेंड बना, बहादुरी, दोस्ती, कुर्बानी की कहानी, ये आज भी बहुत अहम है वहाँ।
हालांकि युद्ध में अनिवार्य भर्ती पर देश में काफी फूट पड़ गई थी।
हाँ, सही। फिर आई 1930 की महामंदी, बेरोजगारी बढ़ी, लोग सरकार पर निर्भर हुए, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध एक असली टर्निंग पॉइंट था।
कैसे?
1942 में जब सिंगापुर में ब्रिटिश हारे, तो ऑस्ट्रेलिया को एहसास हुआ कि ब्रिटेन अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता।
ये तो बड़ा झटका रहा होगा।
बहुत बड़ा। और यहीं पर प्रधानमंत्री जॉन कर्टिन ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया।
कौन सा?
मदद के लिए ब्रिटेन की बजाय अमेरिका की तरफ देखने का।
ए?
ये ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट था, जिसका असर आज तक है।
तो युद्धों ने पहचान तो बनाई, पर दुनिया में उसके रिश्ते भी बदल दिए।
बिल्कुल। युद्ध के बाद एक लंबा दौर आया रॉबर्ट मेंजीज का, प्रधानमंत्री थे वो।
ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छी इकोनॉमी, स्थिरता का टाइम था।
हाँ, जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी थी और सरकार का नारा था पॉपुलेट और पेरिश,
आबादी बढ़ाओ वरना खत्म हो जाओगे।
हाँ, तो यूरोप से लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया आकर बसे, पहले ब्रिटिश, आयरिश, फिर साउथ और ईस्ट यूरोप से भी।
इसने समाज को काफी बदल दिया होगा, ज्यादा डाइवर्स बनाया होगा।
धीरे धीरे, उस वक्त ऑस्ट्रेलियन ड्रीम का मतलब था अपना घर होना, खासकर शहरों के बाहर, सबर्ब्स में।
लेकिन इस शांति के नीचे कुछ और भी चल रहा था।
हाँ, बदलावों की लहरें, नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास आ रहा था, वियतनाम वॉर का विरोध हो रहा था और सबसे जरूरी, स्वदेशी अधिकारों की मांग उठ रही थी।
और फिर आया 1972, गफ विटलम, ये बड़ा नाम है।
बहुत बड़ा, एक मेजर टर्निंग पॉइंट। विटलम सरकार ने व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी ऑफिशियली खत्म की।
अच्छा,
यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मेडिकेयर शुरू किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री की और मल्टीकल्चरलिज्म को सरकारी नीति बनाया, एशिया से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया।
ये तो काफी बड़े बदलाव थे।
हाँ, फिर 80s और 90s में इकोनॉमी को खोला गया, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ।
और स्वदेशी अधिकारों का क्या हुआ?
आंदोलन तेज हुआ। 1992 में माबो डिसीजन आया, ये लैंडमार्क था।
इसमें क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूरोपियन आने से पहले जमीन खाली नहीं थी, टेरा न्यूलियस नहीं थी, स्वदेशी लोगों के उस पर पारंपरिक अधिकार थे, नेटिव टाइटल।
ये तो बहुत बड़ी जीत थी।
हाँ, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन यानी सुलह पर बात बढ़ी। स्टोलन जनरेशंस का दर्दनाक सच सामने आया,
वो बच्चे जिन्हें परिवारों से छीन लिया गया था।
हाँ, 2008 में सरकार ने नेशनल अपॉलोजी भी दी। आज का ऑस्ट्रेलिया इन्हीं सब चीजों से जूझ रहा है, अर्बनाइजेशन, रिसोर्स डिपेंडेंसी, पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन,
रिपब्लिक बनने की बहस, एशिया पैसिफिक में रोल, चीन के साथ रिश्ते, बहुत कुछ है।
हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कहानी है जो अभी चल रही है।
अगर हम इस पूरी कहानी के कुछ मेन थीम्स या धागों को देखें तो सबसे पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से पर्यावरण का असर और इंसानी अडेप्टेशन। वो अनोखी कठोर जमीन, उसने सबको मजबूर किया ढलने पर, स्वदेशी लोगों से लेकर आज तक।
मॉर्गन की वो बात याद है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक पर्यावरण वाला देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक पर्यावरण है जो एक देश बन गया।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि भूगोल कितना फंडामेंटल है।
दूसरा थीम,
अलगाव और जुड़ाव का टेंशन, दुनिया से कटे होना पर जुड़ने की कोशिश,
और ब्रिटेन की कॉलोनी से एक आजाद एशिया पैसिफिक देश बनने का सफर।
हाँ, तीसरा और बहुत अहम, उपनिवेशवाद की विरासत,
स्वदेशी लोगों का विस्थापन, असमानता जो आज भी है।
सही, सुलह अभी भी एक अधूरा काम है।
चौथा है बहुसंस्कृतिवाद और पहचान, कैसे एक देश जो खुद को सिर्फ गोरा समझता था आज इतना विविध है।
इमिग्रेशन ने इसमें बड़ा रोल निभाया है, ये देखना दिलचस्प है कि अलग अलग कल्चर कैसे साथ रहते हैं, पहचान कैसे बदलती है।
भारत में भी हम ये रोज देखते हैं।
पांचवा, रिसोर्सेज पर निर्भरता, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पैसा भी आया, मुश्किलें भी आईं, सस्टेनेबिलिटी का सवाल खड़ा हुआ।
ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है, विकास और पर्यावरण का संतुलन।
और छठा, वो विरोधाभास, फेयर गो और मेटशिप जैसे आदर्श, और साथ में नस्लीय भेदभाव का इतिहास।
ये दिखाता है कि राष्ट्रीय कहानियां कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं।
हाँ, और एक बात और, प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा जोर, आइडियोलॉजी पर कम, समस्याओं का हल निकालना।
किताब में कुछ कोट्स भी हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, जैसे स्वदेशी लोगों के बारे में मॉर्गन कहते हैं, स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की महान उपलब्धि कठोर भूमि में जीवित रहना नहीं बल्कि स्थायी जीवन शैली बनाना था जो उनके पर्यावरण को बेहतर बनाती थी, ना कि खराब।
कितनी गहरी बात है ये, उनके ज्ञान का सम्मान।
और युद्ध पर, गैलीपोली में ऑस्ट्रेलिया ने एक लड़ाई हारी लेकिन एक आत्मा प्राप्त की, हार में साहस, साथियों के प्रति वफादारी की एक राष्ट्रीय चरित्र की कहानी गढ़ी गई।
हार से भी पहचान बनना,
और पहचान बदलने पर, ये देखिए, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को खत्म करना राष्ट्र की पहचान का एक मौलिक पुनर्निर्धारण था। इसने ऑस्ट्रेलिया को एशिया प्रशांत में अपनी भूगोल की जटिल वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया,
अपनी सच्चाई को मानना।
सुलह पर यह विचार आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि और स्थिरता बेदखली के एक मूलभूत कार्य पर बनी है, सच्ची परिपक्वता की और राष्ट्र की यात्रा अपने प्रथम लोगों के साथ एक वास्तविक और न्यायपूर्ण सुलह से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।
ये बहुत सीधी और सच्ची बात है, अतीत को स्वीकार किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है।
तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है, क्या सीख सकते हैं हम?
देखिए, पर्यावरण की बात तो साफ है। स्वदेशी ज्ञान से सीखना, पानी बचाना, अपने शहरों को मौसम के हिसाब से ढालना।
बिल्कुल, और डाइवर्सिटी को मैनेज करना। ऑस्ट्रेलिया का अनुभव दिखाता है कि ये मुमकिन है, हालांकि आसान नहीं। हमारे जैसे विविध देश के लिए सोचना जरूरी है कि हम अपनी विविधता को ताकत कैसे बनाए रखें।
और इतिहास से सीखना, गलतियों को मानना, सुलह की कोशिश करना, ये किसी भी देश को मजबूत बनाता है। और ये समझना कि राष्ट्रीय पहचान बदलती रहती है।
हाँ, और बदलाव को अपनाने की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज बदली, दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलने के लिए तैयार रहना होगा।
इस पूरी बातचीत में मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर गई, वो यही विरोधाभास है, फेयर गो का आइडियल और साथ में नस्लीय भेदभाव। ये दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर हो सकता है।
और मेरे लिए सबसे खास रहा पर्यावरण और इंसान का रिश्ता। ऑस्ट्रेलिया दिखाता है कि भूगोल आपकी किस्मत नहीं लिखता, पर वो सीमाएं तय करता है जिनके अंदर आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। हमें अपनी धरती का सम्मान करना सीखना होगा।
तो शायद किताब का सार यही है कि ऑस्ट्रेलिया की कहानी आसान नहीं, ये विरोधाभासों, संघर्षों और अडैप्टेशन की कहानी है।
और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि वो अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करता है, खासकर अपने मूल निवासियों के साथ न्याय और सुलह, और एशिया पैसिफिक में अपनी जगह को पूरी तरह अपनाना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।